ओम शांति। कल परिवर्तन की कला पर हम चर्चा कर रहे थे और उस प्रसंग में मैं ये कह रहा था कि जो बाबा की मुरली है वो परिवर्तन की एक विशेष युक्ति है जिससे हमें पुराने संस्कारों से मुक्ति मिलती है और उसमें से हर एक जो महावाक्य है उसको हमें अपने ऊपर लागू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उससे मुझे किस पुराने संस्कार से मुक्ति मिली, मेरी रूह को क्या राहत मिली, क्या परिवर्तन मेरे जीवन में आया। उसको परिवर्तन का साधन समझकर, मुख्य साधन समझकर हमें प्रयोग करना चाहिए। केवल वो कोई बुद्धि का विकास या विलास नहीं है, एक कोई अपने नॉलेज को इंक्रीज करने वाली केवल वो एक हमारे सामने एक साधारण वाणी नहीं है, बल्कि नॉलेज इज फॉर चेंज। बाबा ने कहा है दिस इज न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड, ये नई सृष्टि की स्थापना के लिए नया ज्ञान है। तो हमें फिर से नया बनाने के लिए, जो हम ये आत्मा पुरानी हो चुकी है, पुरानी कैसे हो चुकी है, इसके संस्कार पुराने हो चुके हैं, इसको फिर से नया बनाने के लिए बाबा ये नया ज्ञान दे रहे हैं। ये नई सृष्टि की स्थापना का मुख्य साधन है। तो बाबा के अगर ये शब्द हम सामने रखते हैं कि इट इज न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड, ये नई सृष्टि की स्थापना के लिए एक क्रांतिकारी नया ज्ञान है, हमारे जीवन में क्रांति लाने वाला एक साधन है, एक परिवर्तन लाने वाली एक वस्तु है, उस तरह से हमें इसको धारण करना चाहिए। बहुत दफा मैं देखता हूं कि जो कुमारों की क्लासेस होती हैं या वैसे भी जनरल क्लासेस होती हैं तो उसमें ये हमारी दृष्टि खराब हो जाती है इस बात की, आमतौर से भाई बहन वर्णन करते हैं और उस पर उनको समझाया भी जाता है। बाबा ने भी कई मुरलियों में कहा है ये आंखें धोखा दे देती हैं और क्रिमिनल आई हो जाती है, सिविल आई की बजाय क्रिमिनल आई हो जाती है। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जो दृष्टि है, दृष्टि इन इटसेल्फ, जो हमारी जो ये देखने की हमारी ये जो आंखें हैं, ये स्वयं में न खराब है न अच्छी है, ये तो साधन है। लेकिन हमारी दृष्टि अच्छी होगी या बुरी होगी, जब हम किसी चीज को देखेंगे उससे आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, जैसे कल मैं बता रहा था, तो इस दृष्टि का आधार है दृष्टिकोण पर। अगर हम दृष्टिकोण को चेंज नहीं करेंगे तो दृष्टि चेंज नहीं होगी। आंखें तो देखने का एक माध्यम है, जैसे फोटोग्राफिक कैमरा का लेंस होता है, लेकिन जो अंदर हमारे मन की वृत्ति है, वृत्ति बनती है हमारे दृष्टिकोण से। हमारा आउटलुक क्या है, हमारा जो लुक है वो डिपेंड करता है, आउटलुक जो है वो डिपेंड करता है हमारे इन लुक पर, हमारे जो मन में भरा हुआ क्या है। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, नकारात्मक सोचते हैं कि सकारात्मक सोचते हैं, ये जो हमारे सोचने की विधि है, तरीका है, जिसको मैंने कहा कि दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण पर दृष्टि डिपेंड करती है। तो आप कितना भी सुन लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, दृष्टि ठीक नहीं होगी जब तक कि दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा। एक आप देख लीजिए, आमतौर से पहले जो कवि लोग थे, लेखक लोग थे, वो चांद की मिसाल दिया करते थे अपने बिलवेट के लिए। वो ये कहते थे कि उसका मुखड़ा चांद जैसा सुंदर है, तो वो चांद को बहुत सुंदर समझते थे। उनका दृष्टिकोण ये था कि चांद सुंदर है, तो किसी नारी के चेहरे को वो देखते, उससे तुलना उसकी करते। उनका जो दृष्टि थी वो उस दृष्टिकोण पर आधारित थी। लेकिन अब जब चांद पर आदमी जाके उतरा और उन्होंने देखा वहां तो बड़े खड्डे हैं और वहां पर तो रेत ही रेत है, माइका ही माइका है, तो अब जो उनका दृष्टिकोण है, अब अगर किसी को आप ये कहें कि इसका चेहरा तो चांद जैसा है, तो बजाय महिमा करने के उसका मतलब ये आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि चांद में तो खड्डे हैं, वो तो खराबी है, वो हमें दूर से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो फोटो वहां से लेकर आए हैं, आपने कभी किसी मैगजीन में या अखबार में छपा हुआ देखा हो, अब तो पता लग गया कि वो एक भद्दी चीज है। अगर हमको जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, माइक्रोस्कोप का कभी यूज किया है, अगर इंसान के चेहरे को अगर एक हम माइक्रोस्कोप से देखें, ये जो हमारे रोम हैं, जो सुराख सुराख से हैं, जिनसे पसीना निकलता है, तो वो इतने बड़े एनलार्ज होकर आपको दिखाई देंगे। और ये चेहरा जिसको हम सुंदर चेहरा समझते हैं, इट इज फुल ऑफ जर्म्स। अब मनुष्य के अंदर इतने जर्म्स, इतनी गंदगी, इतने कीड़े भरे हुए हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से यूज करें, ये तो बाहर एक प्लास्टिक, अच्छे से प्लास्टिक से ढका हुआ है, जो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। वरना संडास में, लैट्रिन में, टॉयलेट में जो कुछ होता है वो इसमें है, गार्बेज में जो कचड़े के कूड़ेदान में आप डालते हैं वो भी सब इस कुछ है, जो पीक दान में, थूक दान में आप डालते हैं वो भी इसमें है। संसार की कौन सी गंदगी है जो इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे से प्लास्टिक से, रंगीन से ढका हुआ है, ऊपर से जैसे कोई राबट हो और वो अच्छा सा ऊपर से उसका मास्क या खोल बना दिया जाए, वैसी हालत है। तो जिस व्यक्ति को ये दृष्टिकोण है कि ये शरीर देखने में बाहर से सुंदर है लेकिन ये अंदर क्या है, वो दृष्टिकोण जिसका होगा तो उसको आकर्षण होगा, उसको कभी भी आकर्षण नहीं होगा। तो दृष्टि नहीं बदलेगी जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं वो जो बाहर चीज हमें दिखाई देती है वो मैसेज हमारे मन में जाता है कि फलां चीज हमने देखी, एक 6 फुट का इंसान देखा हमने, ये पुरुष है या स्त्री है वो हमारे सामने आया। अब आंखें तो हमारी छोटी सी हैं, आदमी 6 फुट का है तो हमने देखा कैसे, हमारे मस्तिष्क पर तो बहुत छोटा सा प्रतिबिंब पड़ता है, उसका अक्ष जो पड़ता है, जो इमेज पड़ता है वो तो बहुत छोटा सा होता है, उसके कलर्स क्या हैं, उसके कॉन्टूर या उसके चेहरे के आसार क्या हैं, बनावट क्या है उसकी, आकृति प्रकृति कैसी है उसकी, ये सारे मैसेजेस बाद में जाके ब्रेन के द्वारा आत्मा इंटरप्रेट करती है। तो वो जहां इंटरप्रिटेशन की स्टेज है कि ये क्या है क्या नहीं, तो वो जब तक हमारी जो रेस्पॉन्स है, ये बाहर का तो स्टिमुलस है, ये तो उत्तेजक है, ये बाहर जो कुछ हमारे सामने है ये तो मैसेज भेजता है हमारे अंदर, फिर वहां से रेस्पॉन्स आता है, रेस्पॉन्स आता है कि ये 6 फुट का मनुष्य है, पुरुष है, और ये फलां जगह का रहने वाला है, इसको मैंने कई साल पहले देखा था, इसका नाम ये है, वो सारा उसका रिकॉर्ड खोलकर, उस आदमी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ इसका नाम क्या है, और उसके कोई सारा बायोडेटा या उसका परिचय तो नहीं लिखा हुआ कि कहाँ का रहने वाला है, इसके माता पिता का क्या नाम है इत्यादि। वो जो हमारे अंदर सारा रिकॉर्ड है उससे मैच करके, तुलना करके, जैसे पुलिस किसी क्रिमिनल के रिकॉर्ड फोटो को देखकर कहती है ये वही आदमी है जिसको हम पकड़ना चाहते थे, जिस पर 1 लाख की वो लगी हुई थी, तो वो उसको पहचानने की कोशिश करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। इसी तरह से वो जो अंतर का हमारा रेस्पॉन्स है, वो बाहर का जो उद्दीपन या उत्तेजन है, जो बाहर का स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस का रेस्पॉन्स है। वो रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, जब तक मनुष्य का वो अंतर का दृष्टिकोण ना बदले तब तक उसकी दृष्टि बदलेगी नहीं। और वो दृष्टिकोण कैसे बदलेगा, बाबा की ज्ञान मुरलियों से। बाबा जो हमको सारा रोज समझाते हैं ये मरे पड़े हैं और ये तो आसवी संपदा है, ये मूर्छित हुए पड़े हैं इत्यादि इत्यादि, ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो फिर हमारा रेस्पॉन्स उसके अनुसार होता है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता है और फिर कंप्यूटर उसी प्रोग्राम के अनुसार हमारे सामने चीज लाता है। तो जब हम अपने मस्तिष्क में बाबा का दिया हुआ ज्ञान भरते रहते हैं, बुद्धि में हमारे वो धारण होता रहता है, तब फिर हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो फिर दृष्टि भी बदल जाती है, क्योंकि दृष्टिकोण से पहला परिवर्तन होता है वृत्ति में, और वृत्ति से फिर बदलती है स्थिति, स्मृति और स्थिति, और उससे फिर हमारा जो दृष्टि है वो स्वयं बदल जाती है। तो इसलिए जो अगर हम चाहते हैं कि हम अखंड पवित्रता का पारण करें, हमारे जो पवित्रता रूपी खजाना है, श्रेष्ठ बाबा का दिया हुआ वरदान, उस वरदान को हम किसी विधि से न गंवाएं, वो हमारी अनमोल निधि है, बाबा का दिया हुआ हमें एक वरदान है। ब्रह्मा कुमार जीवन की सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति यही है। हम चाहे दुनिया की दृष्टि से बिल्कुल गरीब से, हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों से बहुत पीछे से, लेकिन बाबा ने ये जो अनमोल हमें पवित्रता रूपी खजाना दिया है, ये तो अतुल है, इसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकता। सारी दुनिया के खजाने इसके सामने हेज है। अब ये हमारा बना रहे खजाना, पूंजी हमारी, तो उसके लिए जो हमारी दृष्टि है वो ठीक कैसे रहे जब हमारा दृष्टिकोण ठीक रहे? और वो दृष्टिकोण ठीक कैसे रहे जब हम रोज मुरली सुने, और उस मुरली को सुनते सुनते हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो देखने का सोचने का तरीका है वो बदले। उसको बदलने से फिर ये दृष्टि हमें धोखा नहीं देगी, फिर हमें पूरी रूप से ये समझ होगी कि हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, कहाँ से आए हैं। अभी तक हमें ये जो आउटलुक है, ये जो हमारा अंतर का जो हमारा परिवर्तन है, ये नहीं हुआ था। तो जब अंतर का परिवर्तन होगा तब बाह्य परिवर्तन होगा। हम बाह्य परिवर्तन करने की अगर कोशिश करेंगे, जैसे सूरदास ने आंखों में अपने सलाई लगा के आंखें निकाल दी, तो क्या नतीजा निकला? उसकी सारी कविताएं आप पढ़ के देख लीजिए कि अपने आंखें निकालने के बाद भी जो कुछ उसने लिखा है उससे आपको मालूम होगा कि उसके मन की स्थिति क्या थी। वो बोलता है कि हे गोपाल, ये संसार एक सागर है, इसमें काम रूपी मगरमच्छ, क्रोध रूपी ग्रह, ये वो, ये सब मुझे खा रहे हैं। हे गोपाल मुझे बचाओ, हे गिरधर मुझे तुम बचाओ। ये कविताएं उसने लिख रखी है। कविता लिखने का तरीका उसका सुंदर है, कविता की दृष्टि से एक सुंदर अच्छा कवि हुआ है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो उस कविता का कंटेंट है, जिस विषय पर उसने लिखा है, जो उसके मन को प्रतिबिंबित करता है, जो उसकी अवस्था को झलकाता है, वो अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि बेचारा बूढ़ा तो हो गया लेकिन परिवर्तित तो हुआ नहीं। वो कहते ना, आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान, आदमी तो बूढ़ा हो गया लेकिन उसकी जो तृष्णा है वो जवान हो गई, उसकी जो वृत्तियां हैं वो और ही बलवान हो गई। ऐसा ही हाल उसका रहा। आपको मालूम होगा कि भारत में भर्तृहरि नाम का एक राजा था, और उस राजा को कैसे वैराग्य आया, एक लंबी कहानी है उसकी। और उस वैराग्य से उसने अपना महल छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, महारानी छोड़ दी, वैभव सुख संसार के सब छोड़ दिए, क्योंकि उसको धक्का लगा। उसका अपनी पत्नी के प्रति बहुत अगाध मोह था, आकर्षण था, उसके बिना रह नहीं सकता था। जैसे तुलसीदास की आपने कहानी सुनी होगी, वो समझता था कि दुनिया को छोड़ सकता हूं, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन कैसे उसको मालूम पड़ा कि इसका मन कहीं और लगा हुआ है, और जिससे इसका मन लगा हुआ है उसका कहीं और लगा हुआ है, और जिससे उसका लगा हुआ है उसका फिर कहीं और लगा हुआ है। जब ये सारी रिसर्च हो गई तो उसका मन टूट गया कि मैं समझता था कि जिसका मेरे से प्रेम है और जिसका मुझसे अगाध प्रेम है, ये तो धोखा था, मैं धोखे में था। तो इस बात को समझने के बाद उसने अपना माल छोड़ दिया, जंगल में जा रहा था। तो उसने अपने अनुभवों में बताया है, जंगल में जब जा रहा था, चांदनी रात थी और रास्ते में कुछ गिरा पड़ा था, तो उसने वो चांदी की तरह से चमक रहा था, उसने समझा ये कोई चांदी का सिक्का है, क्योंकि चांदी सोने से ही उसका वास्ता पड़ता था रोज। तो उसने उठाने की कोशिश की, सोचों में विचार में जा रहा था, उसको उठाने लगा तो उसका हाथ खराब हो गया, वो तो थूक थी, किसी ने पान थूका था, पान में कोई ऐसी चीज मिली हुई थी जो वो चांदनी रात में चमकती थी चांदी की तरह से, उसने वो अशर्फी समझ ली, अशर्फी समझ के उठाने लगा तो हाथ भी खराब हुआ, मन बड़ा खराब हुआ। और बोलता है कि अरे भर्तृहरि, तेरे पास खजाने भरे पड़े थे, किस चीज की तुझे कमी थी, और तू उनको सब छोड़ दिया, लात मार दिया, और फिर एक अशर्फी तू उठाने लगा, देख तेरा क्या हाल है, तेरा क्या नतीजा निकला। तो अपने मन को समझाता है कि अरे मन, तूने मुझे कितना धोखा दिया कि मैं जिस चीज को छोड़ चुका, फिर मेरा लालच, वो जो बना हुआ था संस्कार, वो कहते ना चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो फिर उसका मन उधर गया। तो उसका हाथ जब वहां लगा तो उसके मन में बड़ी कराहत आई, तो वो दृष्टि उसको धोखा दे गई। दृष्टि क्यों धोखा दे गई? कि दृष्टिकोण धोखा दे गया। अभी तक उसने छोड़ तो दिया था लेकिन पूरी तरह से उसको लात लगी नहीं थी, पत्नी की तरफ से तो लगी थी, लेकिन उसने पत्नी को छोड़ने के साथ साथ महल भी छोड़ दिया, खजाने भी छोड़ दिए, खजाने से उसका मन अभी टूटा नहीं था, पत्नी से टूटा था। अब जब उसका हाथ खराब हुआ तो उसको लगा कि दुनिया है क्या चीज और शर्फियां बशर्फियों में क्या रखा है। अब उसको एक आखिरी झटका और लगा, और उस लगने के बाद उसने एक पुस्तक लिखी वैराग्य शतक, उसको वैराग्य आ गया। जो वैराग्य सन्यासी लोग हैं वो उसका अध्ययन करते हैं, तो वो वैराग्य की बातें उसने फिर बाद में जाके लिखी। लेकिन कहने का बात यह है कि उसकी भी दृष्टि उसको धोखा दे गई जब तक कि उसका दृष्टिकोण नहीं बदला। तो दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा दृष्टि नहीं बदलेगी, और वो दृष्टिकोण बदलेगा जब हम पहले मुरली को उस दृष्टि से पढ़ेंगे। और हमारे पढ़ने की विधि क्या है? सबसे पहले हम सोल कॉन्शियस होकर बैठते हैं। कोई सत्संग, कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक संस्था ऐसी नहीं होगी जहां इस प्रकार से पढ़ाई की विधि हो कि पहले पहले सब योग में बैठते हैं। लेकिन उससे बड़ा अंतर पड़ता है, पहले पहले जब हम योग में बैठते हैं और विदेह अवस्था में देह से न्यारे होकर और शिव बाबा की याद में और उस स्मृति दृष्टि वृत्ति में, उस समय जो हमारे ग्रहण की अवस्था होती है, जो हमारी रिसेप्टिविटी होती है, जो ज्ञान की धारणा की जो हमारी एक कुशलता होती है, स्टेज होती है, वो मैक्सिमम हाइट पर होती है। तो जब हम शिव बाबा की मुरली सुनते हैं उस समय अगर हम यही सुने समझें, सामने दादी जी बैठी हैं या कोई हमारे क्लास की टीचर सुना रही हैं, लेकिन उस समय हमारे सामने शिव बाबा हो, शिव बाबा आए, उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से या किसी भी साकार माध्यम से ये महावाक्य उच्चारण किए, वो जब हमारे मन में भावना होगी कि हम आत्मा हैं, अपने शरीर को भूलकर हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा ये हमारे कल्याण के लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस दृष्टिकोण से जब हम उस ज्ञान को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती जाएगी, जैसे प्रिंट होता जाएगा, और वो जो हमारा दृष्टिकोण उससे बनेगा उससे हमारी दृष्टिकोण बदलेगी। तो परिवर्तन की जो कला है उसमें जो ये हम कई दफा धोखा खा जाते हैं कि माया सबसे पहले पहले हमारी मुरली में अरुचि पैदा कर देती है या क्लास मिस करा देती है या मुरली को हम एक रूटीन की तरह से पढ़ लेते हैं, उसको परिवर्तन की कला का एक सर्वोत्तम माध्यम नहीं समझते, तो उससे हम हमारे परिवर्तन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ये हमें पहले पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा मैं ये कह रहा था कि बाबा के जीवन की जो कल मैं मिसाल दे रहा था कि उनको जो साक्षात्कार हुए और फिर साथ साथ वो किसी भी बात को दोबारा नहीं कहलवाते थे, एक गलती अगर कभी हो भी जाए तो वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, ये अगर इस बात को पूरी तरह से हम सामने रखें कि अगर कोई भूल हो भी गई, गलती हमने की भी सही, दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि दोबारा रिपीट होने से मनुष्य में कई खराबियां और आ जाती। आप देखें कि एक व्यक्ति एक दफा फेल हो जाता है इंसान में, अगर दोबारा फेल हो या तीसरी दफा फेल हो या चौथी दफा फेल हो, तो फेल होना तो खराब है लेकिन उस फेल होने के जो और परिणाम हैं उसके साथ साथ वो उस व्यक्ति पर बहुत पड़ते हैं, बुरे, घातक, उसके लिए बहुत हानिकारक, क्योंकि फिर उसके बाद उसके जो मन की स्थिति है अपने बारे में हमेशा के लिए उसकी निराशा हो जाती है कि मैं तो फेल होने वाला लड़का हूं, मैं पास हो ही नहीं सकता, मेरे में वो योग्यता ही नहीं जो दूसरों में है। ये जो भावना, हीन भावना जो आ जाती है, वो हीन भावना वाला फिर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। और फिर इसमें तो ये कठिनाई है कि अगर एक गलती हमने की और दोबारा फिर गलती की तो उसका आपको मालूम है कि इससे संस्कार बनता है, जो चीज हम रिपीट करते हैं उसी से ही तो संस्कार बनता है। तो अगर हम भूल को रिपीट करते हैं और तो हम गोया संस्कार को पक्का करते हैं, हम दो कदम पीछे हटते हैं, बजाय इसके कि हम आगे बढ़े, प्रगति हमारी हो, प्रगति की बजाय अवनति होती है, हमारी उन्नति नहीं होती। इसलिए हमेशा इस बात के लिए पूरा हमारे मन में एक धारणा, दृढ़ संकल्प हो कि अगर कोई गलती हमसे हो भी गई, इट वुड नेवर बी रिपीटेड, ये फिर इसका पुनर्व जो हमारे एक्शन में आए रिपीट हो वो नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो परिवर्तन की कला है उसमें हम एक बात का ये ध्यान दें, आपको बहुत से भाई बहन ऐसे मिलेंगे जो आपको कोई ऐसा समाचार सुनाएंगे जो हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया को, कि उसकी जो गति है उसको कम करने वाला होगा। मिसाल के तौर पर कोई आपको कहेगा, अरे आपको मालूम है वो जो फलां भाई आता था ना, 10 साल से ज्ञान में चलता था, कितना अच्छा चल रहा था, हम सब समझते थे कि बहुत अच्छी इसकी धारणा है, उसने जाके शादी कर ली। अच्छा, आप इसका बताने का आपका एम क्या है? कोई पूछे कि भाई आपका ये जो सूचना समाचार दे रहे हो, इसका लक्ष्य क्या है? तो जैसे वो डेली न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, कई लोग भी ऐसे होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर्स की तरह से काम करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स के हैकर्स होते हैं ना, साइकिल पर आते हैं और बड़ी गर्मा गर्म खबर दे के सुना के चले जाते हैं, ताकि धड़ाधड़ हमारी अखबार बिके बहुत अच्छी तरह से। वो कहेंगे जी राजीव गांधी के खिलाफ सारी अपोजिशन वाली वॉकआउट कर गए, तो लोग कहेंगे अच्छा क्या बात है, क्यों वॉकआउट कर गए, जरा आज अखबार पढ़नी चाहिए। वो ऐसी खबर नहीं सुना है, चटपड़ी सी, तो व्यक्ति समझते आज तो कोई खबर ही नहीं, आज तो सब ढीला डाला मामला है, कोई नई खबर नहीं, तो वो अपना बेचने के लिए ऐसे करता है। ऐसे ही कई व्यक्तियों की भी आदत होती है कि नेगेटिव न्यूज आपको सुनाएंगे। अच्छा, उस समय आपको मालूम पड़ेगा हमने सुन लिया, इट्स ओके, लेकिन एक्शन नेवर गोज वेस्ट। जो आपने सुना उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ने वाला जरूर है, ये आप समझ लीजिए। बाबा ने जो कहा है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, ये इविल बात आपने सुनी तो सही, अब भी नहीं तो कल को ये थोड़ा सा असर आप पर करने वाली जरूर है। या तो हम इतने परफेक्ट हो चुके हों, इतने हम में आत्मा में शक्ति आ चुकी हो कि हमको ये प्रभावित ना करते हों, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, फलां व्यक्ति भी गिर गया, फलां भी अपना व्रत से गिर गया, फलां व्यक्ति भी ज्ञान से छोड़ के चला गया, इत्यादि इत्यादि, तो धीरे धीरे ये वीकनेस लाती है। एक दिन आदमी कहता है जो उनका हुआ सो मेरा भी होगा, चलो ठीक है। जहां जहां और आपने देखा है संसार के बहुत से लोग कहते हैं, जब हम उनको सुनाते हैं कि विनाश होने वाला है, सब चुगाने वाला है, कुछ पुरुषार्थ करो, तो क्या कहते हैं कि भाई जहां करोड़ों लोग और हैं उनका जो होगा सो हमारा भी होगा, देखा जाएगा। तो ये चीजें जैसे किसी दीवार को हथौड़े मारते रहो, उस वक्त ये न लगे कि ये दीवार हिल रही है या ये ईंट अपने स्थान से गिरने वाली है, लेकिन हथौड़े लगते लगते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो अपना स्थान वो छोड़ जाती है, ये मनुष्य को प्रभावित करते हैं। ना ऐसी न्यूज किसी को सुनाने की जरूरत है, ना ऐसी न्यूज किसी के, हमें हमारा क्या मतलब है? अगर कोई चला गया या आ गया, ये टीचर का कार्य है, वो उन्होंने बड़ों को किसी को बताना हो या उसका कोई साधन करना हो, हमारी कोई ड्यूटी हो, हमारे लिए कोई सेवा हो, तो ये जो बैड न्यूज है जिससे कि मनुष्य को नेगेटिविटी आए या उसके पुरुषार्थ में कमी आए, कि किसी ने कहा है गॉड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज, कि दुश्मनों से तो मैं खुद ही निपट लूंगा, लेकिन हे प्रभु मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये जो अपने जिनको हम दोस्त बहुत दफा समझते हैं, फ्रेंड समझते हैं, कई दफा वो हमारा ज्यादा नुकसान कर देते। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि इतने वर्ष हो गए मुझे ज्ञान में, इतने अच्छे अच्छे भाई जो ज्ञान में चल रहे थे और बड़ा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे थे, बहुतों से आगे निकल गए थे, बहुत अच्छी धारणा थी उनकी, पॉइंट्स नोट करना, योग लगाना, मर्यादा में चलना और नियमों का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत, भोजन की शुद्धि इत्यादि, कितना हर प्रकार से अच्छे चल रहे थे। लेकिन संघ में जो अपने दूसरे भाइयों का हुआ, जिन्होंने जिनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं, जो उनकी ड्यूटी नहीं, जो किसी किस्म की बात जो उन्होंने अपने जीवन में ले ली, उससे धीरे धीरे उनकी मन की विकृतियां होने लगी। पहले अच्छे थे, न क्रोध करते थे, न निंदा करते थे, न घृणा करते थे, न झगड़ा करते थे, न बड़ों की ना फरमानी करते थे, लेकिन मैंने देखा कि कोई ऐसा जरूरी बात है, कोई ऐसी परीक्षा आती है, ऐसी समस्या आती है जिससे कि मनुष्य में जो दबे हुए संस्कार हैं उनको जागृत होने का मौका मिलता है। मान लो किसी सेंटर पर कोई एक भाई आता था, अब वो भाई ठीक नहीं चल रहा था, ये बहुत पहले की बात है, ये कोई 1957 या 58 की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक सेंटर पर कोई भाई आता था और वो बहुत अच्छा चल रहा था, चलते चलते उसमें कुछ थोड़ा संशय पैदा हो गया, कई कारणों से नहीं ठीक चल रहा था, उससे उसकी धारणाएं कमजोर होने लगी। धारणाएं कमजोर होने लगी तो एक दूसरा क्लास का जो स्टूडेंट था तो उसको लगा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये हमारी क्लास में क्यों आता है, इसको निकालो यहां से, तो ये तो हमारी इतनी पवित्र इतनी अच्छी क्लास है, इसके आने का कोई मतलब नहीं, इसको निकालो यहां से। अच्छा, अब भावना तो उसकी अच्छी थी कि भाई उसकी ये मान्यता थी कि हमारी इतनी शुद्ध पवित्र क्लास है, इस पवित्र क्लास में अपवित्र लोग नहीं आने चाहिए जिनकी दृष्टिवृत्ति हमारे वातावरण को खराब करे। उसने ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, अपने ऊपर ले ली। आपस में दोनों की कहा सुनी हो गई। कहा सुनी होने के बाद क्या हुआ कि सेंटर के बाहर दोनों लोग आपस में लड़े, हाथापाई हुई उनकी, मार पिटाई की एक दूसरे की। उसने बोला तुम कौन होते हो रोकने वाले, उसने कहा तुम आके दिखाओ आप सेंटर पर, तुम्हारे जैसे आदमियों के आने की कोई जरूरत नहीं। एक समय था जब दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, प्यार करते थे एक दूसरे से, दोनों बड़े अच्छे चल रहे थे, और अब उसको थोड़ा देख करके कमजोर हुआ है, उसकी धारणा कमजोर हुई है, उसने अपने ऊपर क्या जिम्मेवारी ले ली कि झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब जिसने झगड़ा किया उसमें भी क्रोध नहीं था, देखने में ऐसा आता था ठीक चल रहा है, जन्म जन्मांतर तो क्रोध रहा होगा, हम सब में विकार रहे हैं 63 जन्म तक। लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो अपने अटेंशन करके ठीक से शांत रूप से चल रहा था। लेकिन वो बात बढ़ते बढ़ते, आपस में कहा सुनी बढ़ते बढ़ते, जब प्रेस्टेज इश्यू हो गया और ठान ली दोनों ने आपस में, तो बाहर खड़े होके मोहल्ले में सबके सामने लड़े। तो उससे कितनी डिसर्विस हुई, उस सेंटर की इतनी डिसर्विस हुई कि वहां फिर सर्विस करना ही मुश्किल हो गया। लोगों ने कहा अरे ये तो कहते थे कि ये शांत जगह है, यहाँ पर मनुष्य का क्रोध वगैरह पर विजय प्राप्त कराई जाती है, इन लोगों को तो हम कुछ टाइम से आता हुआ देखते हैं, ये अच्छे माने जाते थे, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो हुआ क्या कि उसको जो पहले तो ये बातें रोज सुनना दूसरों से कि ये व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रहा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। ये टीचर का काम है कि कोई व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा उसको उसने ढील देनी है, चलाना है या नहीं चलाना, बाबा की उसको क्या शिक्षा है, क्या उसने करना है। चलो मान लो, ये भी समझ लो कि टीचर वीक है, टीचर किसी के प्रति ज्यादा कोई जो स्ट्रिक्ट एक्शन है लेना चाहिए, फर्ज कर लो नहीं लिया उसने, उसकी गलती मान लो, तो उसकी गलती अगर है तो उसका भी साधन है, तरीका है। हम टीचर को आदर पूर्वक रीत से कह सकते हैं, फिर भी हम स्टूडेंट हैं, टीचर इज टीचर, हम उसको कह सकते हैं कि बहन जी ये तो क्लास का वातावरण खराब होगा, इसका आना बंद किया जाए, जब तक कुछ समय ये ना आए तो हम समझते हैं वो ठीक रहेगा, नहीं तो औरों पर भी इसका खराब असर पड़ेगा। चलो उसके बाद भी अगर टीचर कुछ नहीं करता, हम हेडक्वार्टर में लिख दें कि भाई ये बात यहां पर हो रही है, ये ठीक नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमारा काम समाप्त हो गया, हम यहां योगी बनने के लिए आए हैं। अगर योगी बनते बनते हमने फिर क्रोध अपने जीवन में लाया, घृणा अपने जीवन में लाई, द्वेष अपने जीवन में लाया, और बाबा कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु कोई नहीं, तुम्हारे शत्रु ये विकार हैं, हमने उस व्यक्ति को शत्रु मान लिया, मान लो, तो आप देखेंगे कि हमारा मन जो योग में लग के आगे हम बढ़ रहे थे, प्रगति हमारी हो रही थी, जो हमें परिवर्तन की कला आ रही थी, उसमें रुकावट आ जाएगी। अच्छा, वो रुकावट का कारण तो कोई बनना ही होता है, मैंने आपको बताया कोई ना कोई परीक्षा आती है। उसका नतीजा क्या हुआ, जिस व्यक्ति की मैं बात आपको कह रहा था कि उसके मन में जब उसके क्रोध आया, और फिर बाद में क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स ने उनको कहा कि आपकी गलती है, आपने क्रोध क्यों किया, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आपने हाथापाई की, बाबा ने तो किसी मुरली में कहा नहीं कि आप झगड़ा करो, हाथापाई करो, लड़ाई करो, हिंसा करो, आपने ये काम क्यों किया। अब दूसरों के प्रति उसका होने लगा, वो कहते हैं कि तुमको क्या पता, ऐसे आदमी नहीं आया, तुम लोग कुछ नहीं करते तो कोई तो एक्शन लेने वाला होना चाहिए। अब उनसे भी उसका थोड़ा मन मुटाव हुआ। अब उस मन मुटाव होने के बाद उसके मन में ये आया कि मैंने तो क्रोध किया है, सब मेरा इमेज तो खराब हो गया है, सब लोग सोचेंगे ये कैसा आदमी है, ये अपने आप को बड़ा योगी समझता है, तो क्रोधी है, क्रोध करता है, और मोहल्ले वाले आसपास वाले, अब मैं क्या लोगों को ज्ञान सुनाऊंगा। उसके अपने मन में आप ग्लानी पैदा होने लगी दूसरों के कहने के बजाय, फिर धीरे धीरे उसने आना ही छोड़ दिया। वो व्यक्ति मेरे से भी पहले ज्ञान में आता था, एक सेंटर की बात मैं बता रहा हूँ, किसी और शहर में, यूपी के शहर की बात है, वो मेरे से भी पहले आता था, लेकिन हमें समाचार मिला, बाबा के पास हम आए हुए थे, बाबा को एक बहन बता रही थी कि फिर उसने आना ही छोड़ दिया, वो स्वयं ही ज्ञान से समाप्त हो गया, उसको निकालने चला था खुद ही बेचारा निकल गया। तो एक कहानी हमने सुनी थी बचपन में कि एक धोबी के घर में एक कुत्ता भी था, एक गधा भी था, और एक दिन चोर आया तो वो चोरी करने लगा। तो कहानी तो ऐसी होती है, काक एंड बुल स्टोरी। तो उसने गधे ने कुत्ते को कहा भी तू भौंकता क्यों नहीं, तेरा काम तो जो है भौंकना है, तू भौंकेगा तो मालिक जागेगा। चोर चोरी कर रहा है और तू हमेशा रोटी खाता रहा है, पलता रहा है, दूध पीता रहा है, और आज जब तुझे आगे पीछे भौंकता है, और अब जब भौंकने का टाइम आया है तो तू चुप करके बैठा हुआ है, भौंकता क्यों नहीं तू, तेरी ड्यूटी है, तू भौंक। तो उसने कुत्ते ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपना काम करो, हमको तुम कौन होते हैं इंस्ट्रक्शन, यू आर नॉट माई बॉस, तुम मेरे को क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। उसको बोलता है कि तू अपना काम कर, तू मेरी ड्यूटी क्या है वो मैं जानता हूँ, इस मालिक ने मेरे को बड़ा तंग कर रखा है, मेरा मूल्य तो समझता ही नहीं है, तुम्हारा ही मूल्य समझता है, तुम्हारे ऊपर कपड़े रोज लाद के ले जाता है, तुम्हें खूब परवरिश करता है, मेरे को तो समझता है बेकार है, पड़ा रहता है सारा दिन, आज जब चोरी होगी तो उसको पता लगेगा कुत्ते का क्या मूल्य है। तो वो उसको भी स्ट्राइक करने का मौका मिल गया, तो कुत्ते को तो वो समझता है कि आज ही तो ये मौका है, जैसे कोई ऐसे दिन नजदीक आते हैं इम्तहान के, टीचर लोग स्ट्राइक कर लेते हैं, अब हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे अपना आप देखो, तुम देख लो, मौका हर कोई ढूंढता है ना। तो उसने स्ट्राइक कर ली कुत्ते ने, भौंका नहीं। तो उसने गधे ने सोचा ये मालिक हमारी इतनी सेवा करता है, हमें जीवन भर पालता है, हमारे लिए मेहनत करता है, तो ये गलती कर रहा है। उसने ढीचू ढीचू करना शुरू कर दिया, उसने कहा ये तो भौंकता नहीं है, चलो मैं ढीचू ढीचू करना शुरू कर दूं। अब ढीचू ढीचू जब उसने जोर से किया, मालिक की जात खुली, बेचारा दिन भर का थका हुआ था कपड़े धोके, तो उसने सोचा ये क्या पागल है रात को ढीचू ढीचू कर रहा है। उसको जो लगा गुस्सा, उठते ही उसने एक लाठी लेके मारना शुरू कर दिया, बड़े जोर से उसको लाठियां मारी, वो गधा तो ढेर हो गया वहां पर। तो वो इसलिए कहावत बनी हुई है कि भाई इट इज नॉट योर वर्क, व्हाई शुड यू डू अनदर पर्सन ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी, लेट हिम डू इट, व्हाई यू आर इंटरफियरिंग इन हिज ड्यूटी। तुमने वो काम किया उसका तुम्हें नतीजा मिल गया, क्या उसका नतीजा हुआ। ये टीचर का काम है क्लास को कैसे चलाना है, स्टूडेंट्स को कैसे चलाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसके, उनके और अपना स्टाफ है, आपका काम यह है कि एज ए गुड स्टूडेंट या बाबा की सर्विस के निमित्त यज्ञ के एक मददगार होने के नाते, किसी को नहीं मालूम है तो चलो आप इन्फॉर्म कर दो, यू डू योर ओन ड्यूटी, बट वाई शुड यू इंटरफियर। हर एक को अपना अपना एक कर्तव्य मिला हुआ है, और ये सुंदरता होती है उसमें कि हर कोई अपने अपने कार्य को पूरे रूप से करे। तो मैंने ये देखा है कि जब हम दूसरों से ऐसी बातें नेगेटिव सुनना शुरू करते हैं, सुनने से प्रभाव पड़ता है कि हम में उत्तेजना आ जाएगी, कोई हम बीच में पड़ जाएंगे, बीच में पड़ने से उसका नतीजा कुछ आगे 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 बढ़ते जाएंगे, इन्वॉल्व होते जाएंगे, इन्वॉल्व होते जाएंगे, जो हम वो कहते हैं ना वो आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, वही वाली हालत हो जाएगी। आए तो थे हम योगी बनने के लिए, और फिर या तो हम नेताजी बन के रह जाएंगे, और या हम कोई खिटरागी मल बन के रह जाएंगे, कुछ उसका फायदा तो होगा नहीं। इसलिए हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने जीवन में सबसे पहले इस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए कि हमने अपने जीवन को परिवर्तित करना है। दूसरे को परिवर्तन की हम राय दे सकते हैं, उसको तरीका बता सकते हैं, बाप ने हमें जो शिक्षा दी है, युक्ति दी है, उससे उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको लाभ अगर हमसे कोई पहुंच सकता है तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हम अपना मार्ग छोड़ दें, जो हमारा पवित्रता का मार्ग है, अनुशासन का मार्ग है, एक हमारे दिव्यता का मार्ग है, अगर किसी प्रकार से हम भी दिव्यता की कला से नीचे उतरते हैं तो समझ लो कि हम कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं, उससे उसी वक्त थम जाओ, अगर नहीं थमोगे तो फिसलते फिसलते फिर उसका नतीजा आगे को खतरनाक होगा। तो इसलिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो पतंजलि है उसने कहा है अर्थ योग अनुशासनम, योग एक अनुशासन का रूप है, योग एक डिसिप्लिन है, ये कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना ये एक डिसिप्लिन है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे सोना कैसे नहीं सोना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा अनुशासन है, ये स्व अनुशासन है, हम अपने ऊपर स्वयं राज्य करना सीखते हैं, अनुशासन करते हैं। उस अनुशासन के मार्ग से अगर हम चलते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि ये भी एक अनुशासन और प्रशासन है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर हम कोई बनी हुई चीज को बिगाड़ते हैं तो समझो कि वो योगी के मार्ग से हम हट जाते हैं, वो परिवर्तन हमारे लिए कुपरिवर्तन है, सुपरिवर्तन नहीं, शुभ नहीं, अशुभ है। तो इसलिए हमेशा कोई अगर हमें गुमराह करता है या कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हमें अपने मार्ग को, परिवर्तन को ये टटोलना जरूर चाहिए कि इससे हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं या हमारे जीवन में जो खराबियां हम छोड़ चुके थे दूसरे एक एक आदमी अन्याय करता है, दूसरा आदमी क्रोध करता है या वायलेंस करता है। अन्याय जो करता है वो स्वाभाविक बात है कि वो पापाचार करता है, भ्रष्ट आचरण करता है। लेकिन उस अन्याय को ठीक करने के लिए अगर हमने भी कोई क्रोध कर लिया, वायलेंस कर ली, उसने एक विकार के अधीन हुआ, हम दूसरे विकार के अधीन हुए, तो कोर्ट में तो दोनों ही अपराधी हुए। उस पर दफा दूसरा लग जाएगा, हमारे ऊपर दफा दूसरा लगेगा। जो लॉ की क्लासेज हैं, भाई लॉ का फलां सेक्शन लगेगा, एक आदमी ने किसी को मारा उस पर ये लगेगा, और दूसरे ने किसी को जहर देने की कोशिश की उस पर दूसरा दफा लगेगा, मान लो मिसाल के तौर पर। लेकिन हैं तो दोनों ही अपराधी, ऐसा काम हम क्यों करें जिससे कि भगवान की निगाह में, शिव बाबा की निगाह में, या जो कर्म की गति है उसको सामने रखते हुए हम भी अपराधी की कटघरे में आ जाएं, उसका नतीजा क्या होगा। तो इसलिए परिवर्तन की कला में हमेशा हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो संगठन का जीवन है, उस संगठन के जीवन में हम न्यारे और प्यारे होकर, हम अपने योगी जीवन से विचलित ना हो, किसी के कहने से, दबाव से, उसकी पर्सुएशन से, उसके प्रभाव से हम गलत काम ना करने लगे, वरना हम योगी मार्ग से हटना शुरू कर देंगे। जो परिवर्तन दिन ब दिन हमारा तेज होता जा रहा था, हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा और ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी, ये मैं आपको बताता हूँ। हर एक के जीवन में सूनर और लेटर आती जरूर है, लेकिन हम ये समझें कि हमने एक अनुशासन में, मर्यादा में, संयम में, नियम में, योगी के लिए जो एक बताई हुई बातें हैं कि जिसका उसने पालन करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर योगीज। योग को छोड़ के हम कोई गलत काम नहीं कर सकते जो संसारिक व्यक्ति करते हैं। मैं परिस्थिति की बात कह रहा था, जिनमें से एक परिस्थिति मैंने बताई, और बहुत मुरलियां बाबा की इस पर चली हुई है कि परिस्थिति को स्वस्थिति से जीतो। तो परिस्थितियां हमारे सामने बहुत आएंगी, लेकिन परिस्थिति को स्वस्थिति से जीते कैसे? उस समय हमारी स्वस्थिति ही जो है वो डामाडोल हो जाती है, परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, वो हमको प्रभावित कर देती है। तो क्या कारण है कि परिस्थिति जब विकराल आती है उस समय हमारी स्वस्थिति टिकती नहीं? अब जैसे वर्षा ऋतु आई, ये परिस्थिति है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वर्षा जो है, मौसम है, वो तो आएगी सो आएगी। जुलाई एंड अगस्त और रेनी सीजन, इन महीनों में वर्षा तो होती है, कभी नहीं होती, तो इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। लेकिन नियम तो यही है अभी तक जो चला आ रहा है कि भाई ये मानसून विंड आती हैं और इन दिनों में वर्षा होती है, ये परिस्थिति आएगी, तो आप क्या इलाज करते हैं उसका? छाते का इंतजाम करते हैं, रेनकोट का इंतजाम करते हैं, देखते हैं हमारी छत कहीं से लीक तो नहीं करती। अगर कहीं आपको जाना है, आना है, उसके लिए आप उपाय कर लेते हैं, कैसे जाना आना है। तो परिस्थिति का पता है हमें। अगर हमारे पास ना तो छाता का इंतजाम हमने किया होगा, ना हमने रेनकोट का इंतजाम किया होगा, ना किसी और प्रकार का जो चाहिए हमें हमने इंतजाम किया होगा, तो फिर वो परिस्थिति हमें प्रभावित करेगी, हमारी स्थिति भी डामाडोल होगी। हमने जहां से जाना है आबू रोड, या यहां से जाना है बस स्टॉप पर बस लेने के लिए, ना हमारे पास रेनकोट है, ना हमारे पास छाता है, बड़े जोर का मूसलाधार बारिश हो रही है, तो हमारी गत बनेगी अच्छी तरह से? रस्ते में हम बिल्कुल भीग जाएंगे अच्छी तरह से, तरबतर हो जाएंगे, और उसके बाद जब कपकपी होगी या ठंडी हमारे अंदर घुस जाएगी या जुकाम खांसी या जो कुछ भी होगा सो होगा, परिस्थिति हमारे शरीर को प्रभावित कर देगी क्योंकि हमने इंतजाम नहीं किया। तो अगर हम इंतजार करते रहें कि रेनी सीजन आएगा तब करेंगे, इंतजाम न करें। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में क्या कहा हुआ है कि इंतजार न करो, इंतजाम करो। वो इंतजाम करो उस परिस्थितियों के लिए। बाबा ने बता दिया कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी। आप सारी मुरलियां पढ़ के देख लें, कोई परिस्थिति उसमें से रह गई हो जो बाबा की मुरलियों में ना आई हो और आपके जीवन में आ गई हो, तो आप हमें बताएं कि जगदीश भाई मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ गई, बाबा ने इस परिस्थिति का तो कभी वर्णन किया नहीं। बाबा ने सब परिस्थितियों का वर्णन पहले से कर दिया। जैसे किसी को बताया जाए सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बहार भी आती है, खिजां भी आती है, ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, रेनी सीजन भी आता है, किसी को पहले से बता दिया है कि भाई सीजन का साइकिल इस प्रकार से चलता है, ऐसे परिस्थितियां आएंगी। आप सर्दी का पहले से इंतजाम कर लो, सर्दी आएगी, ऐसा ना हो उस वक्त दांत तुम्हारे छटछट करते रहे, पहले से उसका प्रबंध कर लो। तो ये जब किसी को मालूम हो और फिर अगर वो इंतजाम ना करे, इंतजार करता रहे कि जब सर्दी आएगी तब देखी जाएगी, जब जैसे वो फौजों के लिए बताते हैं, उन्होंने कहा कि दुश्मन की फौजें वहां तक आ गई, तो कहते हैं आने दो अभी तो बहुत दूर है, नतीजा उसका क्या हुआ? और कबूतर देखता है कि बिल्ली आ रही है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है कि मेरी तरफ नहीं आ रही, और कबूतर वो बिल्ली आके पकड़ लेती है गर्दन उसकी, फिर उसको पता पड़ता है जब गर्दन उसके मुंह में होती है तब पता पड़ता है कि अरे वो तो आ गई। उस वक्त क्या होगा, पहले से इंतजाम नहीं करता, इंतजार करता रहता है आने दो अभी। ऐसा ही हम करते हैं कई दफा। तो बाबा ने सब परिस्थितियां बताई हुई हैं, उन परिस्थितियों के लिए जो इंतजाम करना चाहिए वो भी बताया हुआ है। अब वो इंतजाम हम ना करें तो उसका नतीजा क्या होगा, वो प्रभावित करेंगी, स्वस्थिति हमारी डगमग हो जाएगी, हम अपना अचल अडोल अवस्था में रह नहीं सकेंगे, नतीजा ये होगा कि विचलित हो जाएंगे। तो परिस्थितियों का पहले से इंतजाम करो। ये जो मुरलियां हैं बाबा की, जिसको जिसके लिए मैंने कहा कि उनको पढ़ने का एक दृष्टिकोण तो ये रखो कि इससे हमारा कौन सा पुराना संस्कार खत्म होता है, ये हमारे अंतर में क्या परिवर्तन ला रही है, उनको परिवर्तन का तरीका समझो। दूसरा उसमें ये देखो कि कौन सी परिस्थिति के लिए क्या इंतजाम बता रहे हैं बाबा। जब आप मुरली पढ़ते हो तो उसमें ये देखो कि बाबा ने ये जो बताया है ये किस परिस्थिति का इंतजाम करने के लिए बताया है। अब आपको कोई फंक्शन करना है, आपको कनाल से नाने मंगवाने हैं, बिजली का इंतजाम करना है, चेयर्स की वो करना है, कार्ड छपवाने हैं, आप इंतजाम करते हैं ना सब। इंतजाम ना करें फिर आपस में खामखा की बात होती है कि इतना खर्च हुआ रिजल्ट नहीं निकला, ये चीज रह गई वो चीज नहीं की, नतीजा क्या होता है, असफलता सामने आती है, फिर मनुष्य में टेंशन पैदा होती है, फेलियर आता है, सक्सेस नहीं होती। तो इंतजाम करना पड़ता है उस परिस्थिति का अंदाजा लगा के, सारा चित्रण लगा के, कि ये समझ लो कि ये ऐसी परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति में हमें पहले से क्या इंतजाम करके रखना चाहिए। आपने मेला कर लिया, वर्षा ऋतु में मेला कर लिया, लगातार बारिश, वो तो मिट्टी के बने हुए हैं सब, वहां पर वो मिट्टी के माथों बन जाएंगे सब, वहीं के वहीं ढेर हो जाएंगे, तो क्या फायदा होगा, सब खराब हो गया। थोड़ा सा इंतजाम आपने नहीं किया कि उनको रेन प्रूफ दे देते, ये मिट्टी की चीज है, अगर वर्षा हो गई जैसे कि मौसम भी है, परिस्थिति साफ दिखाई दे रही है, तो हमें इंतजाम करना चाहिए। तो परिस्थिति और स्वस्थिति की जो आपस में बात हमेशा बाबा सुनाते हैं मूल्यों में, उसके बीच का गैप कैसे पूरा हो, उसके बीच के गैप की जरूरत यह है कि जो समझदार लोग होते हैं वो पहले प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, इंतजाम करते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए स्टडी करो, होम टास्क ये करो, मुरली में मुरली पढ़ के उसका अध्ययन करके ये सोचो कि ये परिस्थिति एक दिन मेरे पास भी आएगी, अब मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं ठीक हूं, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम यंग, टुमारो ए ट्रबल में कम। भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं जिसको शरीर का रोग होगा नहीं, कोई दुर्घटना घटेगी नहीं, या बुढ़ापा आएगा नहीं, कोई दांत दर्द करेगा नहीं, सिर दर्द करेगा नहीं, या कोई अपाचन या सपाचन होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो शरीर को खटखट होगी जरूर। ये कलयुग की संसार है, अंतिम हमारा जन्म का ये शरीर है, तो ये कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब कोई चीज होगी। अब उसके लिए बाबा ने क्या कहा हुआ है कि जब रोग आए तो क्या करो, उसकी पहले से क्या तैयारी करो, ताकि उस समय भी मेरा योग ना टूटे, मेरी स्थिति अचल रहे, आना तो है एक दिन जरूर, तो मैं कैसे अशरीरी हो जाऊं। और वो बाबा ने रोग की जो परिस्थिति है या बुढ़ापे की जो परिस्थिति है या जो शरीर की कमजोरी की या और शरीर से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, बाबा कहता है ये तन भी आपको खिटखिट करेगा, मन भी तूफानी बनेगा, संबंधी भी आपके रास्ते में विघ्न डालेंगे, ये सब सारा संसार उथल पथल खाएगा, ये सब परिस्थितियां आएंगी। ये सारी परिस्थितियां बताई हुई हैं, उन परिस्थितियों के लिए इलाज भी बताया हुआ है। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ाता है बीमारी, बीमारी का कारण और उसका निवारण सारा बताता है, ये उस रोग है, रोग के चिन्ह है, ये रोग का निदान है, ये करो। तो बाबा ने एक परम वैद्य की तरह से ये सारा हमें स्पष्ट बताया हुआ है। तो आप ये सोचो कि आज तो हम ठीक ठाक हैं, कल ऐसा होगा। बाबा ने कहा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, आज तो हमारी कोई निंदा कर नहीं रहा, सब कहते हैं ये तो बहुत अच्छा भाई है, लेकिन कल ऐसी परिस्थिति आएगी आपकी निंदा करने वाले आएंगे, जो महिमा करते हैं वो भी आपकी निंदा करेंगे, और वो निंदा ऐसी करेंगे जिसका कोई बेसिस भी नहीं होगा, झूठा इल्जाम और झूठ लगाकर आपकी निंदा होगी, और जिनको आप स्नेह करते हैं, जिनसे आप आशा करते हैं, जिनके ऊपर आपके एहसान है, जिनको आपके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए, वो लोग भी आपकी निंदा करेंगे, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उनको कैसे मित्र समझेंगे, उस समय तो मित्र समझेंगे नहीं, गुस्सा आएगा आपको, आप कहेंगे अरे ये आदमी बोलता है, इसको मैंने ही सबका कोर्स कराया था, फिर मैंने इसको मधुबन ले गया था, फिर दादी दीदी से परिचय भी इसका मैंने कराया था, बाबा से मिलाने का इसका मैंने मित्र बनाया था,
और ये इसको कई प्रॉब्लम लाइफ में आई, मैंने इसको हेल्प की थी, ये वो सब आपके सामने राम कहानी आएगी। और फिर आप कहेंगे आज ये मेरी निंदा करता है और इसकी कोई बुनियाद नहीं, बेसलेस इल्जाम लगाता है मेरे ऊपर और मैं बताता हूं तो समझता नहीं है, फिर आपको वो मित्र नहीं दिखाई देगा, दुश्मन दिखाई देगा, घृणा पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, क्रोध आएगा मन में, बेचैनी टेंशन आएगा, तो वो परिस्थिति आएगी। उस परिस्थिति के लिए बाबा ने क्या बताया हुआ है, क्या करो, पहले से आप अपने में वो शक्ति भरो जिससे कि कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हम अंगद की तरह से हो, हमारे पांव माया ना हिला सके। तो ये इस ढंग से मुरली को समझने की कोशिश करो कि किस परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति कैसे बनी रहे। ऐसे ही सिर्फ उसको ना पढ़ डालो, जैसे वो अफगानिस्तान की लड़ाई हुई इतिहास में हमने पढ़ लिया, पानीपत की लड़ाई हुई, तो क्या हमने थोड़ी करना है, हमने ना तो फौज में भर्ती होना है ना कोई लड़ाई का, हमने तो सिर्फ पढ़ के इम्तिहान में उसका वर्णन लिख के आना है बस ना। वो जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूल में, इतिहास हमने पढ़ लिया, वो इतिहास तो यहां तक है कि मार्क्स लेने हैं बस छुट्टी हुई, हमने जो अपना काम करना है अपने घर में, मास्टर जी अपने घर में, लेकिन ये तो हमारे काम की चीजें हैं, ये तो जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, ये कोई पानीपत की लड़ाई की तरह से नहीं है, कोई पानीपत का भाई बैठा हो तो बुरा ना मना जाए कि भाई पानीपत की लड़ाई की सिर्फ बात कहते हैं, लड़ाइयां तो भारतवर्ष में कई हुई, कुरुक्षेत्र की भी हुई और भी हुई, लेकिन कहने का भाव ये है कि ये सब परिस्थितियां सामने आएंगी, उन परिस्थितियों के लिए हमारी स्वस्थिति कैसे बनी रहे ये हमें सोचने का है। फिर एक अंतिम बात बता के इस विषय को समाप्त करता हूं, आज हमें दूसरा विषय लेना था, इसको यही विराम देता हूं जी। हैं? हाँ वही आपको बताया है कि वो परिस्थितियों की बाबा ने वो सारा वाणियों में दिया हुआ है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका उसमें ना दिया हुआ, यही मैं आपको कह रहा था। अब एक एक परिस्थिति को मैं लेने लगूं वो तो फिर आप काफी महीना डेढ़ महीना यहाँ कम से कम रहे तब कुछ बात चले, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत आएंगी फिर भी रह जाएंगी, लेकिन अगर मोटे मोटे रूप से मुख्य मुख्य रूप से ली जाए तो भी काफी परिस्थितियां, बाबा की मुरलियां और किस बात पर है, इसी बात पर तो है। तो मैं ये कह रहा था कि इस विषय को समाप्त करने से पहले एक बात और ये बता देता हूँ कि सबसे परिवर्तन उसका रुक जाता है अधिक जो जिसका सीखना बंद हो जाता है, जो ये समझ लेता है कि मैं सीख चुका हूँ, मैं तो जानता हूँ, ये बात तो मैंने मुरली में पढ़ी थी, कोई और बात बताओ, जिसका ये एटीट्यूड हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसका कोई बड़ा भाई कोई बड़ी बहन अपने अनुभव के आधार पर उसको कोई चीज समझाए वो कहेंगे ये क्या नई बात बता रहे हैं, ये तो मुझे मालूम है, तो समझो कि उसका परिवर्तन समाप्त, वो सीख नहीं सकता, वो बुढ़ा हो गया, जैसे बुढ़ा आदमी बदल नहीं सकता, बुढ़े तोते पढ़ नहीं सकते, उनको राम राम कितना भी बोलते रहो वो नहीं बोल सकते, इसी तरीके से वो व्यक्ति भी ज्ञान की दृष्टि से बुढ़ा हो गया समझो, जो ये समझता है अब अभिमान में आ गया है, समझता है कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, कोई बड़ों की बात भी नहीं सुनता, कोई अच्छे अपने क्लास के टीचर की, दादी जी की, कोई अपने बहन भाई की, जो शुभ चिंतक होकर उसको कोई बताते हैं अरे भैया ये बात ठीक नहीं है ऐसा मत करो, किसी की भी मानता नहीं है, उसकी गिरावट शुरू हो। इसके बाद समझो जो बड़ों की दृष्टि से गिर गया वो गिर गया, उसको फिर कोई पकड़ नहीं सकता, कोई थाम नहीं सकता, ये मैं आपको जीवन का अनुभव बता रहा हूं। इसलिए भैया कम से कम जो हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, जिन्होंने जीवन में अनुभव किए हैं, जिनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं, कोई हमसे दुश्मनी नहीं, हमारा भला चाहते हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, इस ख्याल से हमें आशीर्वाद देते हैं, ये उनका आशीर्वाद है जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, उस अच्छी शिक्षा को स्वीकार करो, बजाय उसको ये कहो कि ये तो नहीं हो सकता, आपको बात का पता नहीं, आपको क्या मालूम, या मेरे में ये कमजोरी है मैं तो ठीक हो नहीं सकता, चाहे अपनी कमजोरी बताओ, चाहे परिस्थिति बताओ, चाहे कुछ भी बताओ, बल्कि ये कहो कि आपने हमारे ऊपर कृपा की जो हमें रास्ते पर लगाया, हमें गाइड किया, हमें अच्छी बात बताई, और पूरी कोशिश करो उसको अपने जीवन में लाने की, ट्राई योर बेस्ट, तो उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी शुभ भावना से, शुभकामना से, आप देखेंगे कि जो आपके मन में कमजोरी आ गई थी, जिसमें हीन भाव आ गया था, आपको बल्कि बल आएगा अंदर से, आप फिर चलने लग पड़ेंगे। तो जिसमें ये भाव आ जाता है कि मैं तो इतना पुराना हूं, मेरे को क्या बताएंगे, मुझे तो सब मालूम है। तो उसकी जो सीखना, सीखने की कला परिवर्तन की कला है। बिना सीखने के परिवर्तन नहीं हो सकता। एज लॉन्ग एज वी लर्न वी चेंज, इफ वी सीज टू लर्न वी सीज टू चेंज। अगर हमने सीखना छोड़ दिया, हमारे परिवर्तन की कला खत्म हो गई। ये सीखना क्या है? यही परिवर्तन सीखना है, जो हम कहते हैं ज्ञान लेना है, सीखना है। हम स्टूडेंट्स हैं, किस चीज के स्टूडेंट्स हैं? परिवर्तन के स्टूडेंट्स हैं। हाउ टू चेंज आवर सेल्फ, यही हमारा अध्ययन है। ये जो हमारे चार विषय हैं, ये सारे परिवर्तन के लिए हैं। और अगर हम परिवर्तित ही नहीं होना चाहते, और वो कहते ना बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, अगर यही हमने ठान रखा है कि हमें आप कितना भी, हम तो चिकने गहरे की तरह से हैं, आप जितना भी पानी डाल लो हमें तो एक बूंद भी टिकने वाली नहीं है, देन नो वन कैन चेंज अस, फिर हमें कोई नहीं बदल सकता। तो कहते हैं ना भाई, अगर ब्रह्मा जी भी आकर इस व्यक्ति को सिखाना चाहे तो भी ये नहीं सीख सकता। जिसकी खोपड़ी ही उल्टी हो गई, उसने धारण ही नहीं करना। आपका नल, वो जो नल भी कई किस्म के होते हैं, आपने देखा होगा जो कोयले से चलने वाला, स्टीम से चलने वाला इंजन होता है, या जो स्टेशन पे गाड़ियों में जो पानी भरने वाला नल होता है, वो कितना पानी चौड़ा आता है, उसकी धारा कितनी वाइड होती है, वो भी नल होता है। और जो छोटी सी एक धूतरी होती है, वो भी एक नल है। आपकी सुराही में पानी लेने के लिए गिलास भरने के लिए हो, वो भी एक नल है। नल तो सब है, लेकिन जिसकी जिसका घड़ा ही उल्टा हो, चाहे कितना बड़ा नल क्यों ना हो, उसमें क्या टिकने वाला है? कोई भी टिकने वाला नहीं। तो जिस व्यक्ति ने ये ठान लिया ना कि हम तो सब समझ गए, सीख गए, हमें ये क्या बताएंगे, तो उसके समझो आंखे दिन, बांके दिन जो है बुरे दिन उसके आगे। दैट इज द काज ऑफ द फॉल। तो जब तक हमने जीना है, तब तक हमने सीखना है, अपने को परिवर्तित करना है। अपने बदलने में ही हमारा लाभ है, इसका हम किसी पर एहसान नहीं लगाते। अगर किसी की बात हमें जचती भी नहीं, कम से कम आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक सुन लो, उसका स्पष्टीकरण ले लो, अपनी कठिनाई उनके सामने पेश करो, उसका जवाब उनसे लो, फिर उस पर पुनर्विचार करो, उस पर ध्यान दो। आपके फायदे के लिए वो बता रहे हैं, उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं। तो उससे आप अगर बदलोगे, चेंज होगे, आपकी उन्नति होगी, लाभ आपको होगा। दूसरे की दी हुई वो एडवाइस है, सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि हमारे जीवन में कैसे आएगी? सद्बुद्धि और किसी तरीके से नहीं आ सकती। किसी के जीवन के सद ज्ञान से उसने जो हमें बात बताई, तो गोया हमें सद्बुद्धि दी। और वो सद्बुद्धि का वरदान, जो सर्वश्रेष्ठ वरदान माना जाता है, वो अगर हमें किसी ने दिया और हम उसको लेने की बजाय रिटर्न कर दें, उसका हानि किसको होगी? वी विल बी द लूजर्स, नुकसान हमारा होगा। इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए। तो यहां मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं लेना चाहता था, वो ये था कि हमारे योग की गहराई क्या है, हमारा योग ऊंची क्वालिटी का कैसे हो, योग के हम बड़े अच्छे अच्छे गहरे अनुभव कैसे करें, योग के अभ्यास में हम किन बातों पर ध्यान दें जिससे कि दिनों दिन हमारे योग की जो इंटेंसिटी है, डिग्री है, वो बढ़ती जाए, और योग के जो लाभ कहे गए हैं वो हमारे जीवन में अधिक अधिक हम प्राप्त कर सकें। योग के मार्ग पर हम आगे कैसे बढ़ें, किसी भी तरह से इसको आप कह दीजिए, लेकिन कई प्रकार से हमारे सामने प्रश्न आते हैं। बिंदु रूप स्थिति कैसे हो, अव्यक्त स्थिति कैसे हो, लाइट और माइट का पूरा अनुभव हम कैसे करें, ये सभी एक ही बात को बताने के भिन्न भिन्न शब्द हैं। लेकिन उसका मूल भाव ये है कि योग में हम आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि ये हमारा मुख्य विषय है। जो परिवर्तन की बात भी मैं बता रहा था, उसका भी योग से बड़ा गहरा संबंध है। जो हमारे डीप संस्कार हैं, जो कि हमसे भी छिपे हुए हैं, जैसे बहुत दफा लोग मिसाल देते हैं कि जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर आप सब समझते हैं ना, ग्लेशियर जो बर्फ के पहाड़, जो पहाड़ से फिसलकर नदी में या सागर में चले जाते हैं, मालूम है ना आपको? तो जी हाँ, तो वो जो ग्लेशियर्स हैं, उसका ऊपर तो थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, ज्यादा हिस्सा तो नीचे छपा हुआ होता है। तो हमारा भी जो मन है, उसका कितना हिस्सा तो हमें भी पूरा मालूम नहीं। हमारे मन में क्या क्या दबा हुआ पड़ा है अंदर, वो कहते हैं ना, किसी मनुष्य के मन का पार पाना बड़ा मुश्किल है। मन का पार पाना मुश्किल क्यों है? जब कोई व्यक्ति हमसे बात करता है, व्यवहार करता है, हम देख लेते हैं उसको, किसी के साथ कुछ वर्ष तक रहते हैं तो पूरा पहचान लेते हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि सागर की गहराई तो मालूम हो सकती है, उसके मन की गहराई नहीं मालूम हो सकती। दूसरों को मालूम होने की तो बात छोड़ दो, खुद भी कई दफा मनुष्य को नहीं मालूम पड़ता। कई दफा लोग जब हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हूं, ये भी विचार आता है, ये भी विचार आता है। तो कौन सा विचार उसका असली विचार अपना है और कौन सा माया का मिक्स किया हुआ है, स्वयं भी नहीं मालूम पड़ता मनुष्य को। वो जो जन्म जन्मांतर के 63 जन्म के दबे हुए संस्कार हैं, छिपे हुए से उस ग्लेशियर की तरह से, वो मनुष्य के मन में है। लेकिन उनको भी समाप्त करने वाला, जैसे लेजर रेज निकाली है साइंटिस्ट ने, तो किस प्रकार से वो जो छिपे हुए दबे हुए बहुत गहराई में जो हमारे ऐसे विकृतियां हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकार जनित संस्कार हैं, उनको भी दग्ध कर दें हम उस योग की लाइट और माइट से। उसका कनेक्शन योग से है और जब तक वो चेंज नहीं होंगे तो हम में फाइनल स्थाई पूर्ण परिवर्तन कैसे आएगा। उसके लिए वो योग जरूरी है। योग की भी ऐसी स्टेज जरूरी है जो हमारा योग इतना पावरफुल हो कि वो जो मैंने आपको बताया दबे हुए संस्कार, जो कोई ऐसी परिस्थिति विकराल आ जाती है, हमको भी मालूम नहीं था, वो संस्कार फिर जागृत हो जाता है, सामने आ जाता है। समझाने वाले हमें समझाते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप में ये भी बात अच्छी है, ये भी बात अच्छी है, सिर्फ इस बात को छोड़ो, नहीं छोड़ पाते। वो कहते ना, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो वो कंबल उसको पकड़े रहता है, वो कैसे छूटे, वो सारा योग से कनेक्शन है। तो वो योग हमारा जो है वो डीप योग गहराई से कैसे लगे, तो उसकी चर्चा अब हम करेंगे जो बाकी समय हमारे पास है। उसमें आप पहले सबसे पहले ये देखें कि ये हमें पहले ही दिन से समझाया जाता है कि योग आत्मा का परमात्मा से लगाना है। ये सबको मालूम है, हमारा बेसिस है कि आत्मा का योग, आत्मा का कनेक्शन जिसको हम कहें, परमात्मा से लगाना, नाता उससे जोड़ना, इसी का नाम योग है। आत्मा किसको कहते हैं ये भी हमको समझाया गया कि आत्मा एक चेतन ज्योति बिंदु, एक लाइट है, एक शक्ति है, चेतन शक्ति है। तो उस चेतन शक्ति का हमें ये भी बताया गया कि मन, बुद्धि, संस्कार, स्मृति, ये जो हैं, ये आत्मा से अलग नहीं। तो अगर हमने आत्मा का योग परमात्मा से लगाना है तो इसका मतलब ये है कि योग में ये हमारे सब काम आते हैं। अगर ये मन यानी संकल्प शक्ति, बुद्धि यानी निर्णय शक्ति, या निश्चय शक्ति, या विवेक शक्ति, बुद्धि को जिस तरह से भी हम स्पर्श करें, या स्मृति, या ये जितनी भी चीजें हैं जिनको हम आत्मा की शक्तियां कहते हैं, तो आत्मा का योग अगर परमात्मा से लगाना है तो दूसरे शब्दों में उसमें इनका भी कनेक्शन है, क्योंकि इन सब शक्तियों का सामूहिक नाम, ये इंटीग्रेटेड जितनी भी ये पावर्स हैं, इन्हीं का नाम तो आत्मा है। आत्मा तो एक वन वर्ड है, एक शब्द में हमने एक सत्ता का नाम दे दिया। लेकिन जैसे मनुष्य के शरीर में आंख, कान, नाक इत्यादि हैं, और हम कहते हैं ये मनुष्य है, मनुष्य शब्द एक कह दिया हमने, लेकिन उस मनुष्य कहने से हमारा अभिप्राय इन सब अंगों प्रत्यंगों वाला जो व्यक्ति है, शरीरधारी, उसका नाम मनुष्य है। इसी प्रकार से आत्मा इस एक शब्द से जो हमने सिंबलाइज किया, इंगित किया, इशारा किया, जिसके प्रति जो चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति में ये सब शक्तियां हैं। तो जब हम आत्मा का योग परमात्मा से लगाना चाहते हैं तो इन सब का जो कंसर्न है, जो सबका एक प्रयोग है, वो जरूर होगा। तो इसलिए जब हम 11 योग लगाना चाहते हैं उसमें इन सब की तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसकी मैं मिसाल आपको दूंगा। जैसे आप देखिए, सबसे बड़ी जो मन का जो सबसे बड़ा चिन्ह है, आत्मा का जो सबसे बड़ा लक्षण है, वो है इच्छा, इच्छा शक्ति, जिसको कहते हैं विल पावर। वो इच्छा शक्ति अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, आपकी इच्छा प्रबल है, किसी भी परिस्थिति को देखकर वो रुकती नहीं है, जो मनोरथ या जो लक्ष्य उसने ले लिया है उसको करके छोड़ती है, तो आप कहते हैं भाई इसकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग है। तो विल पावर क्या है? वो इच्छा शक्ति। वो कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह, जो कुछ मनुष्य करना चाहता है तब वो होता है। तो जो शक्ति है आत्मा की, आत्मा यहाँ से हिल भी नहीं सकती, शरीर हमारा चल ही नहीं सकता, हम योग में बैठ ही नहीं सकते, योग का संकल्प ही नहीं कर सकते जब तक पहले इच्छा ना हो। इसलिए पहले पहले शुरुआत यहाँ से होती है। किसी ने कहा है, यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी का जो प्याव है वहां तक ले जा सकते हो, जब तक उसके पीने की इच्छा ना हो आप जबरदस्ती थोड़ी पानी पिलाओगे उसको। पीने की इच्छा तो उसमें स्वयं चाहिए ना। तो जब तक बहुत से लोगों को हम योग के लिए कहते हैं, वो गीत बजता है हमारा राजयोगी बनो, है ना, कितना अच्छा गीत है, निमंत्रण है एक प्रकार से, लेकिन लोगों की इच्छा नहीं तो आते ही नहीं। जब उनकी इच्छा होती है तब आते हैं। दिल्ली से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, मद्रास से, कहां से चल के माउंट आबू आते हैं। कौन सी चीज उनको ले आती है? इच्छा। आत्मा को किसी भी कर्म में कोई प्रवृत्त करती है, किसी भी पुरुषार्थ में कोई चीज करती है, तो वो इच्छा है। और आपको मालूम है, बाबा ने ये कहा हुआ है कि ये जो हमारा योग है, लगन में मगन होने का नाम योग है। बाबा ने ये योग की व्याख्या की हुई है। बाबा ने कहा है, लगन में मगन होना ही योग है। तो हमारी इच्छा इतनी तीव्र हो कि वो लगन की तरह से हो। एक होती है साधारण इच्छा, जिसको हम कहते हैं लाइकिंग। कोई कहता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आपका क्या पीने की इच्छा है, एक वो इच्छा होती है। और एक होती है लगन, लग जाए, जब तक कि वो चीज प्राप्त ना हो उसको छोड़ नहीं सकता आदमी। तो वो जो लगन में मगन होने वाली बात है, जब तक वो लगन ही तीव्र ना हो, इच्छा ही डीप ना हो, तो योग आपका कैसे डीप लगेगा। अगर किसी मनुष्य को भूखी ना लगे तो उसको खाना ही नहीं खाएगा, और हजम ही नहीं होगा तो उसमें शरीर में शक्ति आएगी कहां से। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। उस इच्छा के लिए बाबा ने बहुत सारी बोलियां चलाई हुई हैं। अगर आप उनका अध्ययन करें, उन पर ध्यान दें, एक तरफ तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। क्या मतलब? कि ये जो संसार है, इसके पदार्थों की इच्छा, इनके व्यक्तियों की इच्छा, भोग के पदार्थों की इच्छा, ये जो पहले तृष्णा हमारे जीवन में रही है, ये तो न रहे। ये इच्छा जितनी हमारी समाप्त होंगी, उतना हमारी शिव बाबा की जो प्राप्ति की या अनुभूति की इच्छा होगी, जो योग की जितनी इच्छा हमारी प्रबल होगी, उतना ही ये इच्छा मात्रम अविद्या होगी। वरना संसार के प्रति हमारे आकर्षण होंगे, संसार के पदार्थों को हम प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, और जितना उनकी प्राप्ति की तरफ, उनकी तरफ भागने की हम इच्छाएं होंगी, उतना योग हमारा कम लगेगा। तो डीप योग लगेगा कैसे? जब हमको ये होगा कि तुम्हें पा के हमने जहां पा लिया, शिव बाबा मिला तो सब कुछ मिला, हमारे और किसी संसार के पदार्थ की इच्छा नहीं होगी, और अब जीवन में यही एक इच्छा होगी कि हम बाप समान बने, तब हमारा योग डीप लगेगा। तो इच्छा की पहले पहले जो हमारी परिभाषा है, बाबा ने जो इच्छा पर समझाया हुआ है, कौन सी इच्छा ना हो और कौन सी इच्छा हो, और वो इच्छा भी कितनी तीव्र हो कि लगन का रूप ले ले। बाबा कहते हैं योग अग्नि है, और लगन को भी कहते हैं बाबा अगन है। लगन भी अगन है, योग भी अगन है। तो ये लगन जितनी तीव्र होगी, उतना योग की अग्नि तीव्र होगी। जो अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं हम योग की, तो वो लगन से बनेगी, और वो लगन ही का नाम इच्छा है। इतनी तीव्र इच्छा हो कि मैं हाई क्लास योगी बनूं, मेरा योग बस बाबा में, मन मेरा टिक जाए, मैं उस आनंद रस को लेता रहूं, मेरे जीवन से भोग विलास सब समाप्त हो जाए, मेरा मन इस संसार के कचड़े की तरफ कवे के समान वहां पर बैठना छोड़ के अब हंस बन जाए, अब मैं परमात्मा से ज्ञान के मोती चुभता रहूं, और उससे जो अमृत मिले, मैं उस स्वाति नक्षत्र में, जैसे चातक के लिए कहा है कि चातक वो वर्षा के बूंद पीता है, तो मैं वो अमृत ही पीता रहूं। मेरे मन में बस जीवन में यही इच्छा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार के सब खजाने मेरे सामने हेच हैं, मुझे शिव बाबा मिल गया, अब उस शिव बाबा में मेरा मन रम जाए, उसमें मेरा मन लग जाए, टिका रहे, और उसका रसा स्वादन मैं करता रहूं, मगन हो जाऊं लगन में, यही मेरे मन की एक इच्छा, एकमात्र इच्छा है, जो सब इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा है। तो ये जब तक डीप नहीं होगी, तीव्र नहीं होगी, इसकी डिग्री हाई नहीं होगी, इंटेंसिटी हाई नहीं होगी, तब तक मैं लगन में मगन नहीं हूं। और लगन में मगन होना, वो मगन की जितनी गहरी स्टेज होगी, उसी का नाम तो गहरा योग है। और मगन डिपेंड करता है लगन, और लगन डिपेंड करता है इच्छाओं पर। अगर हम हाफ हार्टेडली कोई काम करेंगे इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, अगर हमारे मन की यही हालत होगी, हमारी अटैचमेंट कईयों से लगी हुई होगी, नष्टोमोह हम हुए नहीं होंगे। नष्टोमोह क्यों नहीं होते? क्योंकि इच्छाएं होती हैं, आसक्तियां होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, आकर्षण होते हैं, उसी का नाम सामूहिक रूप से इच्छा है। कुछ न कुछ वहां से चाहिए, कुछ उम्मीद रखी हुई है, कुछ सहारा कुछ आधार वहां का लिया हुआ है, और उन सबको समाप्त करके एक तरफ जिसको कहते हैं मन मना भाव, अब मन मुझ एक में लगाओ, क्योंकि मन वहां जाता है जहां मनुष्य की इच्छा हो। और मन मना भाव कैसे होंगे? जब मन में यही इच्छा होगी कि मैं शिव बाबा के ऊपर एकाग्र हो जाऊं, वारी जाऊं, उसके गले का हार बन जाऊं, जब यही हमारी इच्छा होगी तो वेयर देयर इज विल, जहां विल पावर स्ट्रांग होगी, यानी ये इच्छा, इसलिए इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। तो जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी उसका योग भी कमजोर होगा। और ये है इच्छा शक्ति का नाम कि भाई एक परमपिता परमात्मा, दूसरा ना कोई, ये लगन हमारी हो, ये हमारी इच्छा की पराकाष्ठा हो, श्रेष्ठ इच्छा हमारे जीवन में हो। पहले पहले जिसको विल कहा जाता है या इच्छा कहा जाता है वो ये चीज सही। दूसरा है संकल्प, संकल्प शक्ति। जैसे इच्छा शक्ति विल पावर, ऐसे ही संकल्प शक्ति थॉट पावर जिसको कहा जाता है। योग क्या है? योग का जब हम किसी को अभ्यास सिखाते हैं या जब कमेंट्री करते हैं और कमेंट्री के साथ साथ व्यक्ति योग करता है तो उसमें क्या हम करते हैं? थॉट्स कहते हैं, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा मनुष्य का विचार वैसा उसका आचार, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो वो संकल्प हम क्या करते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं परम धाम का वासी हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये संकल्प करते हैं ना योग में। तो ये है संकल्प शक्ति। हम उस समय संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये भी आत्मा की शक्ति है, इसे ही तो योग लगाते हैं ना। योग लगाने का और क्या तरीका है? ये थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जिसको कहा जाता है, उस आत्मा के स्वरूप और शिव बाबा के साथ हमारा जो संबंध है, सिर्फ इसी को याद कह देते हैं आप, ये संकल्प याद के संकल्प है, लेकिन है तो संकल्प, ये याद रूपी संकल्प है तो संकल्प ना। दीज आर थॉट्स, बट दीज आर थॉट्स ऑफ रिमेम्बरेंस, ये याद के संकल्प है। तो ये जो संकल्प है, ये जितने हमारे तीव्र होंगे, जितने पावरफुल होंगे, इनमें और कोई मिक्सचर नहीं होगा। ऐसा नहीं एक थॉट तो ये आ गई मैं आत्मा हूं, दूसरी थॉट ये आ गई मैं तो डॉक्टर हूं मुझे डिस्पेंसरी में जाना है, तो वो हमारा योग कैसे लगेगा। एक था तो ये आ गया कि मैं अब योग में अच्छी तरह से बैठूंगा, दूसरा आ गया अरे नहीं नहीं मैंने तो खाना बनाना है किचन में जाके। वो जो भक्ति मार्ग में बताते हैं कि माता भक्ति कर रही है, घंटी बजा रही है और सामने वो ठाकुर जी रखे हुए हैं, और फिर कहती है अरे बेटा देख कहीं दूध तो नहीं गिर गया उबल के, तो वो उस तरफ उसका ध्यान है या उस तरफ उसका ध्यान है। एक संकल्प तो ठाकुर जी का आ रहा है, एक संकल्प जो है उबलते हुए दूध का आ रहा है, तो वो योग कैसे लगेगा। योग जो है वो हमारा संकल्प, एक समय में जो संकल्प है उसकी जो धारा, वो कहते हैं जैसे तेल की धारा होती है, इसलिए इसको कहते हैं निरंतर। तेल की धारा को आप देखें, इससे मिसाल दी गई है योग से, जैसे तेल ही तेल डालता है, तेल की धार डालता है, निरंतर होती है, उसमें अंतर नहीं होगा, एक से एक मिला हुआ, बूंद से बूंद मिली हुई आती है, तो इसी को निरंतर कहते हैं, यानी अंतर ना पड़े इसमें। ये जो हमारे संकल्प हैं, ये एक से एक जुटे हुए आत्मा परमात्मा परमधाम स्वधर्म स्वस्थिति इत्यादि से संबंधित ही संकल्प हैं। दूसरा संकल्प कोई ना है, और ये पावरफुल संकल्प हैं। पावरफुल संकल्प माना कि उस समय मैं आत्मा हूं या नहीं, कहते तो हैं मैं आत्मा हूं, चलो करके देखता हूं क्या अनुभव होता है। तो ये संकल्प ही पहले जो ढीला डाला है, यही जब हिल रहा है, अगर कोई जगह पर हम बैठे हैं वो चीज ही हिलने वाली है तो हम तो हिलेंगे। एक वो बाजार से बुढ़ा बना हुआ आता है, वो मिट्टी का, आपने देखा होगा, एक वो दाढ़ी वाला बुढ़ा हाथ में लाठी लिया हुआ, और उसके थोड़ा ऐसे हिला दो, ऐसे हिलता है, आपने देखा होगा, एक खिलौना जैसा आता है, तो क्योंकि उसके बनावट ही ऐसी है। तो अगर हमारे संकल्पों की बनावट ऐसी होगी तो वो स्थिरता कैसे आएगी हमारे उसमें। तो ये जो योग हम लगाते हैं उसमें जो हमारे संकल्प हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो उस तेल के धारा की तरह से निरंतर जिसको कहते हैं, उसमें कोई व्यवधान ना पड़े, कोई दूसरी प्रकार के लौकिक देह के संबंधित कोई पदार्थों के संसार के कोई और संकल्प ना है, नहीं तो अंतर पड़ जाएगा। एक संकल्प आएगा आत्मा का, दूसरा संकल्प आएगा उबलते हुए दूध का, तीसरा संकल्प आएगा फिर परम धाम का, चौथा संकल्प आएगा दिल्ली का या कटक का या भुवनेश्वर का या मद्रास का या कहीं और का। तो वो जो खंडित हो जाएगा, जो ये जैसे ही कहते हैं भाई यज्ञ रचो तो यज्ञ का खंडन ना हो, या भक्ति पूजा करो तो वो उसमें खंडन ना हो, मूर्ति का जाप करो तो मूर्ति खंडित ना हो, अखंड हो, जाप करो तो अखंड जाप करो, कहते हैं ना लोग योग लगाओ तो अखंड योग लगाओ। अखंड योग 24 घंटे की बात अलग है, लेकिन जिस समय हम योग लगाते हैं 10 मिनट 15 मिनट भी अगर हम योग लगाते हैं उसमें भी अगर वो खंड खंड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, हमारे संकल्प के बीच में गैप्स आ जाते हैं, तो वो योग डीप कैसे होगा? वो तो हम चढ़ते चले ऊपर और ही हमारा वो जो संकल्प है उसी पर ही तो हमारा सारा बेस्ड है। तो ये हमारे जीवन में हमें इस बात का पहले पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संकल्प जितने पावरफुल होंगे, निश्चयात्मक रूप से होंगे, समझने से। इसलिए हम पहले किसी को कोर्स देते हैं, अगर उसको कोई प्रश्न करने हैं तो बेशक पूछ ले, उसका संशय उसके संकल्प जो विश्वास पूर्वक नहीं है वो निवृत्त हो जाए, जब उसका निश्चय बैठ जाए। इसलिए किसी ने कहा योग निश्चय का नाम है, वो निश्चयात्मक संकल्प है। इसलिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं अफर्मेशंस, मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये अफर्मेशन है, यानी इसमें मैं निश्चयात्मक रूप से स्थित होता हूं कि मैं आत्मा हूं। ऐसे सोचने को संकल्प करने को तो कोई भी किया जा सकता है, लेकिन निश्चय पूर्वक कोई संकल्प करना तभी अनुभव होगा। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं आत्मा हूं इससे अनुभव नहीं होगा। कोई अगर कहता है कि मुझे अनुभव नहीं हुआ तो उसका कारण यह है कि उसने जो ये थॉट किया, ये संकल्प किया, वो निश्चयात्मक रूप से नहीं किया। इसलिए एज द फेथ सो इज द फॉर्म, जैसे मनुष्य का निश्चय होता है वैसा ही वो हो जाता है। तो वो हमें ये सोच करके हमारा जो ये संकल्प हो, जितना उस पर डीप निश्चय होगा उतना ही पावरफुल संकल्प होगा। समझ से, विवेक से, जानने के बाद ज्ञान युक्त वो संकल्प। तो दूसरी जो शक्ति जो हमारी काम आएगी वो है संकल्प शक्ति। पहला मैंने बताया इच्छा शक्ति, दूसरा संकल्प शक्ति, इसके अतिरिक्त तीसरा जो बुद्धि है वो है विवेक शक्ति या निर्णय शक्ति जिसको हम कहते हैं। तो ये जब तक हमारे ये सद्विवेक जागृत ना हो और हमने निर्णय ना किया हो, बुद्धि जजमेंट करती है, हमने जजमेंट कर लिया, क्या जजमेंट कर लिया कि ये संसार अब विनाश होने वाला है, ये नर्क बन चुका है, ये आसुरी है, ये तमो प्रधान हो चुका है, ये मुर्दे के समान है, ये निसार हो चुका है, और अब हमको जाना है सत्य की ओर जो कि सुख का सार है जहां पर, और अब हमको जाना है घर वापस, ये समय आ चुका है। तो जब तक कोई व्यक्ति किसी बात का फैसला नहीं करता, आप नाव में तो बैठ गए लेकिन आपने ये अभी तक पूरा फैसला नहीं किया जाना है या अभी बैठना है, जब आपका फैसला हो गया कि जाना है तब आप नाव का रस्सा जो है खूंटे से हटाते हैं, फिर चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो जब तक हमारे विवेक ने हमें ये निर्णय नहीं दे दिया सारा टोटल ज्ञान, हम केवल किसी को आत्मा और परमात्मा का परिचय नहीं दे देते, योग के लिए तो उतना ही काफी था, ये सारा 5000 वर्ष का कल्प, ये कलयुग विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी। इतना ही अगर आप लोगों को समझा दें कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, उनकी ये गुण है, उसमें स्मृति में स्थित हो जाओ, ये योग है तो सही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो सारा हम समझाते हैं कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र और ये सारे जो इतिहास में धर्म ग्लानी के चिन्ह, परमात्मा का उसमें आना और फिर किस लिए आना, कहाँ ले जाएगा हमें, वो क्या करने आया इत्यादि, ये सारी बातें बताने का क्या अभिप्राय है कि आप फैसला करो करना क्या है। मम्मा हमेशा ये कहती थी, मुरली चलाती थी इस पर, कि समय अपना फैसला दे रहा है, भगवान या शिव बाबा अपना फैसला दे रहे हैं, अब तुम भी अपना फैसला करो करना क्या है। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में फाइनल डिसीजन नहीं करता तो कार्य पूरा चालू होता नहीं, ठीक ढंग से होता नहीं। वी मस्ट डिसाइड। जो वेवरिंग माइंड का व्यक्ति होगा, जिसका मन स्थिर नहीं होगा, पहले उसने निर्णय पूरा नहीं किया होगा, तो आप देखेंगे कि वो शेकी होगा, वो डामाडोल होगा, अभी सोचेगा ये कर लूं फिर कहेगा ये कर लूं। किम कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहा जाता है, वो तो कभी कंफ्यूज व्यक्ति होगा, तो उसके माइंड में तो कंफ्लिक्ट होगी। तो जब हमारे मन में ये फैसला हो जाएगा, जितना हमारा विवेक जागृत हो जाएगा कि सचमुच ये संसार अब नष्ट हुआ पड़ा है, शिव बाबा आए हैं परम धाम से हमें ले चलने के लिए, अब जाना है हमने घर में वापस, अब बनना है मनुष्य देवता, अब योगी जीवन हमको अपना बनाना है, ये भोगी जीवन को समाप्त करो, अब हमें नियमों का पालन करना है, इसी में ही हमारा लाभ है, ये संसार की जो बातें हम सुनते आए हैं ये चीची हैं, छोड़ो अब इनको, अब करो इन चीजों का पालन, इसमें ही हमारे आगे उन्नति होगी। जब ये हमने तोल के निर्णय कर लिया, विवेक कर लिया, जितना जिसका स्ट्रांग निर्णय है बुद्धि में, जितना जिसका ये विवेक जागृत हो चुका है, ये ज्ञान की बातें जितना किसी में ठोस रीत से बैठ गई हैं, तो आप देखेंगे कि उसके योग की पराकाष्ठा भी उतनी बदले। जिस दिन उसके मन में कोई संशय होगा बाबा के बारे में, ज्ञान के बारे में, कोई और चीज के बारे में, तो आप देखेंगे कि उसकी जो स्थिति उस दिन होगी वो डावाडोल होगी। तो तीसरी जो शक्ति है, जो विवेक शक्ति, पहले इच्छा शक्ति, फिर संकल्प शक्ति, और फिर ये विवेक शक्ति या निर्णय शक्ति, ये हमारी पूरी साथ में हो, हमने बिल्कुल फैसला कर लिया अटल, इससे टलने वाले नहीं, हम समझ लिया हमने, अब हमें कोई इस रास्ते से गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी हटा नहीं सकता इससे, लगन तो उसी को कहा जाता है ना, जब हटा ना सके कोई वहां से, और वो तभी होगा जब हमने फैसला कर लिया होगा, और फैसला तो तब किया जाता है जब पहले बात को पूरा समझा जाता है, उससे पहले कोई फैसला करता है तो हम कहते हैं बात तो पहले सुनी नहीं और फैसला ऐसे कर लिया, तो हमने सारी बात सुन ली, शिव बाबा ने जो ये जीवन कहानी सुनाई, ये जो सतयुग के आज से कलयुग के अंत तक की कहानी, सृष्टि की आद बाद अंत की उत्थान और पतन की कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनकर हमने निर्णय कर लिया, विवेक कर लिया, अब हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, कैसी हमारी जीवन पद्धति होगी, हमारी लाइफस्टाइल क्या होगी, हम क्या बनना जा रहे हैं, ये जितना हमारे मन में एक दृढ़ता पूर्वक निर्णय हो चुका होगा, फैसला हो चुका होगा, तो हमारी विवेक शक्ति हमारा साथ देगी, निर्णय शक्ति हमारा साथ देगी, और इच्छा शक्ति भी हमारा साथ देगी, और साथ साथ संकल्प शक्ति भी हमारा साथ देगी। आगे और शक्तियों का फिर मौका मिलेगा तो वर्णन करेंगे, अभी समय हो गया, यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।